Pocket Mantra. Pocket Mantra. Pocket Mantra. Pocket Mantra. Pocket Mantra. Pocket Mantra. Good evening, listeners, and welcome to yet another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from our listeners on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we do not address stock or company specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444. 2342-1050 and 2331-0464. And of course, do prefix the code 011. Along with my co-anchor Harsh Ranjan, I am Sarabjeet Kaur.
हेलो सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं, हाजिर हैं हम मार्केट मंत्र के एक और ताज़ा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे, नज़र डालेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों पर, चर्चा करेंगे कि कैसा रहा इस सप्ताह हमारा घरेलू शेयर बाजार। और हाँ, चूंकि दिन शनिवार का है और जैसा कि आपको मालूम है आज का दिन श्रोताओं के लिए ही होता है, तो श्रोता आप चाहें तो कोई भी सवाल अर्थ जगत से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित हमसे पूछ सकते हैं। तीन टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं, नंबर्स हैं 2331-3444, 2342-1050, 2331-410-464। किसी भी नंबर पर फोन करें, हमसे सवाल पूछें, आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ उपलब्ध आर्थिक विशेषज्ञ राजीव रंजन। राजीव, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट मंत्रा में।
नमस्कार।
एंड नाउ लेट्स बिगिन टुडेज मार्केट मंत्रा विद द हेडलाइंस इन इंग्लिश।
Prime Minister Narendra Modi inaugurates multiple development projects worth over 9,000 crore rupees in Mizoram. Domestic markets rise for the second straight week. Sensex and Nifty gain 1.5% this week. And global crude oil prices surge this week on concern over Russian crude supply. Brent jumps over 2% to end nearly $67 a barrel.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मिजोरम में 9000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों में बढ़त, सेंसेक्स निफ्टी में 1.5% का उछाल और कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भी बढ़त, ब्रेंट 2% बढ़कर प्रति बैरल $67 हुआ।
Well, listeners, let's look at the first big news of the day. Prime Minister Narendra Modi today laid the foundation stone of multiple development projects worth over 7,003 crore rupees at Churchandpur in Manipur. The 19 projects include Manipur Urban Roads, Drainage and Asset Management Improvement Project, 5 National Highway Projects, Manipur Infotech Development Project, Working Women Hostels at 9 locations, among others. Addressing the gathering, Mr. Modi said, the projects unveiled today will improve people's lives in Manipur in terms of infrastructure and health care. Mr. Modi added that Manipur is a vital pillar of India's progress. The Prime Minister highlighted that since 2014, the government has laid emphasis on improving connectivity in the region. He said the central government has increased the budget for rail and road. Harsh, I see my first caller is here.
Yes. पंकज।
यस, पंकज फ्रॉम कोलकाता।
जी पंकज जी, सवाल पूछ लें अपने।
जी नमस्कार।
नमस्कार।
ये हमारा एक प्रश्न है कि मेरा अकाउंट SBI में है, मैंने वहाँ पता किया था कि किसान विकास पत्र एक योजना होती है, वो योजना क्या वहाँ मिल पाएगी कि नहीं, तो उन्होंने बताया वहाँ पे नहीं है, तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या कोई अदर्स कोई ऐसा बैंक है जिसमें किसान विकास पत्र योजना के द्वारा उसमें लमसम अमाउंट फिक्स किया जाए, एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि यदि मैं पोस्ट ऑफिस से ही मैं किसान विकास पत्र योजना के द्वारा यदि मैं फिक्स डिपॉजिट करता हूँ और उस डिपॉजिट किए हुए सर्टिफिकेट को यदि मैं अपने बैंक अकाउंट में गिरवी रख के उसके अगेंस्ट यदि मैं कभी फ्यूचर में लोन लेना चाहूँ तो क्या मिल सकती है, तो बताएं इसके पीछे।
जी देखिए, किसान विकास पत्र जो डाकघर की तमाम छोटी बचत योजनाएं हैं उनमें से एक है, और आमतौर पे आप किसी भी डाकघर में जाएं तो वहाँ तो उपलब्ध होगी ही, लेकिन बहुत सारे बैंकों में भी उपलब्ध होती है, और SBI में यह उपलब्ध ना हो तो ये थोड़ा सा आश्चर्य का विषय हो सकता है, वो उस खास शाखा में ऐसा हो कि वहाँ पर प्रबंध ना हो, लेकिन आमतौर पे सरकारी बैंकों में ये उपलब्ध रहते हैं। अगर ऐसा आपके पास की ब्रांच में नहीं है तो आप नज़दीकी डाकघर में जाकर इसे हासिल कर सकते हैं।
अमित हमारे अगले कॉलर हैं दिल्ली से जुड़े हुए। अमित जी सवाल पूछने अपना।
जी सर सभी का नमस्कार। सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारे देश में कभी कभी क्या होता है आलू और टमाटर की व्यापक पैदावार ज्यादा हो जाती है और ज्यादा पैदावार होने के कारण किसानों को उचित मूल्य नहीं बेच पाता है, तो मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ जो चिप्स 10 ग्राम 50 ग्राम के 10 रुपए में हम खरीदते हैं उस हिसाब से 200 रुपए किलो आलू की कीमत हो गई सर, जबकि किसानों को 10 रुपए किलो भी आलू नहीं मिल पाती है सर। तो मैं चाहता हूँ कि जो चिप्स बनाने वाली कंपनियां हैं सरकार उन पर ऐसी बाध्यता करें कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको आलू खरीदना है और इस रेट पे बेसिक प्राइस पे आपको खरीद के रखना है, स्टोर भी आपको ही करना है, कोल्ड स्टोर आपको ही बनाना है, इस तरह कोई प्रावधान हो सकता है क्या सर?
इस तरीके का प्रावधान आप सिस्टमिक चीज कह रहे हैं, आप सुझाव के तौर पर तो ये अच्छा है, लेकिन ये कैसे होगा ये प्रावधान?
इसमें बहुत सारी व्यावहारिक दिक्कतें हैं। अब चूंकि ये बाजार का कार्यक्रम है तो ये चर्चा अलग तरफ चली जाएगी, इसलिए शायद हमें आगे बढ़ना चाहिए।
बिल्कुल।
लेट्स कनेक्ट विद आवर नेक्स्ट कॉलर जितेंद्र फ्रॉम दिल्ली। जितेंद्र जी अपना सवाल पूछिए।
मार्केट मंत्री की सारी टीम को मेरा नमस्कार।
जी नमस्कार।
राजीव जी को भी नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि मैं लास्ट ईयर किसान विकास पत्र मेरा जो मैच्योर हुआ था वो ले नहीं पाया था, मैं रिडीम नहीं कर पाया था, तो उस पर टैक्स की क्या इम्प्लीकेशन रहेगी? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमने रिडेम्पशन नहीं लिया तो भी क्या हमें टैक्स देना पड़ेगा? और दूसरी बात है कि इस साल मैं जैसे उसको रिडीम कराऊंगा तब मैं टैक्स दे ही दूंगा, तो ये इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? धन्यवाद।
जी देखिए, अब किसान विकास पत्र में कोई टैक्स का लाभ तो है नहीं, जो भी आप उससे हासिल करते हैं वो उस पर जो आपको ब्याज मिलता है उस पर आपको टैक्स तो देना पड़ता है, तो आपको जाहिर तौर पे उसे अपने रिटर्न में शामिल करना होगा जब आप उसे रिडीम करेंगे।
योगेश हमारे अगले कॉलर हैं दिल्ली से। योगेश जी सवाल पूछने प्लीज।
जी मेरा सवाल ये है कि जैसे अब गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है और पेट्रोल में E20 लागू हो गया है, तो क्या एथेनॉल से जुड़े हुए कुछ शेयर्स खरीदने का सही समय है या फिर अभी वेट किया जाए?
देखिए बहुत स्पेसिफिकली तो इस कार्यक्रम में हम वैसे नहीं करेंगे, लेकिन हम राजीव से जरूर ये जानना चाहेंगे कि एनर्जी सेक्टर में निवेश कैसा रहने वाला है।
जी इनका प्रश्न चूंकि इथेनॉल से संबंधित है तो इथेनॉल का सबसे बड़ा फायदा चीनी कंपनियों को मिला है, उनकी वायबिलिटी इथेनॉल के इस्तेमाल की वजह से, जो ईंधन में इस्तेमाल हो रहा है इथेनॉल का, ब्लेंडिंग हो रही है, उसके चलते चीनी कंपनियों की वायबिलिटी काफ़ी सुधरी है, और ये हमें हाल में शेयर बाजार में चीनी कंपनियों के प्रदर्शन में भी देखने को मिला है। तो इंडिविजुअली किसी स्टॉक पर तो बात नहीं हो सकती है, लेकिन इन जनरल आप कह सकते हैं कि हाँ चीनी शेयरों को इसका फायदा मिला है।
आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी नमस्कार, सवाल पूछ रहे हैं। जी
नमस्कार।
नमस्कार जी,
मेरे एक क्वेश्चन है, वाइटल क्वेश्चन। मेरे NPS है सर।
हाँ
तो NPS में कभी पैसा जमा करना जो बैंक में, वो लोग बोलते हैं TR1 में जमा करेगा, TR2 में जमा करेगा, आप थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए क्या है सर TR1 TR2?
नहीं एक बार आप और पूछेंगे क्या आप कह रहे हैं NPS में TR1?
नेक्स्ट कॉलर अगेन फ्रॉम दिल्ली दक्ष। दक्ष जी अपना सवाल पूछिए।
सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि GST जैसे 22 तारीख से कम होके लग जाएगा, तो जैसे गोल्ड खरीदने पर भी क्या GST लगता था? और जिन दुकानदारों ने जिन गोदामों में अपना माल भर रखा है पहले के GST रेट से, तो क्या हमें 22 तारीख के बाद से हमें वही रेट से मिलेगा जो कम होके मिलेगा, कि जो दुकानदार अपनी मन मर्जी से ही हमारे को ये रेट से अपने को सामान मिलेगा, इस पे क्या कुछ क्या हम इसके ऊपर क्या अपनी तरफ से क्या निगरानी रख सकते हैं?
जी देखिए सोने पे जो GST की दर है उसमें कोई बदलाव तो हुआ नहीं है, इसलिए अगर आपका सवाल स्पेसिफिकली सोने के संबंध में है, गोल्ड के संबंध में है, तो वहां पर इस संबंध में कोई 22 तारीख से कोई बदलाव नहीं होने वाला है।
रत्नाकर मुंबई से हमारे अगले कॉलर हैं। रत्नाकर जी स्वागत है आपका मार्केट मंत्रा में, सवाल पूछ लें।
हेलो गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है कि अभी लास्ट वीक में तो मार्केट रेजिंग था, राइज कर रहा था
जी,
तो ऐसी हालत में वो डिफेंस सेक्टर में थोड़ी कमी आ रही है ऐसे लग रहा है, तो डिफेंस सेक्टर का आगे आने वाला कल कैसा रहेगा, ये एक सवाल है। और आईटी सेक्टर,
डिफेंस और आईटी के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन चूंकि राजीव इनका सवाल जुड़ा हुआ है मार्केट से, तो पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि यह सप्ताह मार्केट कैसा रहा। घरेलू शेयर बाजारों में इस सप्ताह 1.5% से अधिक का उछाल रहा है। ये पिछले 3 महीने में लगातार दूसरा सप्ताह था जब सेंसेक्स निफ्टी बढ़े हैं इतने। सेंसेक्स में पूरे सप्ताह के दौरान 1,194 अंक की बढ़त रही है और ये 81,905 पर रहा। निफ्टी भी 373 अंक बढ़ा पूरे सप्ताह के दौरान, 25,114 पर आ गया। विस्तारित बाजार की बात करें, बीएसई मिड कैप, बीएसई स्मॉल कैप दोनों में 1.5% से अधिक की बढ़त रही। और जो प्रमुख वजह इसकी हम मानते हैं शायद भारत अमेरिका का जो ट्रेड टेंशन है वो थोड़ा कम होने की आशा है, उस दिशा में थोड़ी सी वार्ता बढ़ी। और यूएस फेडरल द्वारा रेट कट भी किया जा सकता है, ऐसा भी अनुमान है। तो क्या ये वजह रही बाजार बढ़ने की?
देखिए, बाजार कुछ तो तकनीकी वजहों से भी बढ़ता है और ये आशा बीच में ज़रूर कुछ बयान इस तरह के आए हैं हाल में, जिनसे लगता है कि शायद जो ट्रेड डील को लेकर के निराशा बन गई थी एकदम, उतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बातचीत आगे बढ़ रही है। हालांकि उस पर अभी भी मेरे हिसाब से तो वेट एंड वॉच रखना चाहिए जब तक कि अंतिम रूप से कोई फैसला हो नहीं जाता, क्योंकि ये बातचीत कई बार होते होते रह जाती है। इससे पहले अप्रैल में भी हमने सुना था अमेरिका के वित्त मंत्री को कहते हुए कि भारत के साथ सबसे पहले समझौता होने वाला है, बाद में उनके विचार के वजह से बदल गए, ये वही बेहतर जानते हैं। तो ट्रेड डील एक उत्साह का कारण बाजार में ज़रूर है, बाकी तकनीकी वजहें भी अपनी हैं। और जो जीएसटी का बदलाव हुआ है उसने बाजार के अंडर करंट को बदला है, तो मैं ट्रेड डील से ज़्यादा ये देख करके चल रहा हूँ कि जीएसटी की घोषणा होने के बाद से बाजार में अंडर करंट जो है वो नीचे गिरावट काफी अरेस्ट हुई और उसके बाद बाजार ने वापस अपनी दिशा ऊपर की ओर की है।
और देखिए, भारत इस समय आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, एक तरीके से विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने के लिए बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। और हमने देखा कि डिफेंस सेक्टर की अभी बात कर रहे थे, सवाल भी आया था, डिफेंस में पहली बार हम इतने आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े हैं कि हम अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस में, तो ऐसे में डिफेंस सेक्टर कैसा रहने वाला है शेयर बाजार की नजर में?
देखिए, दो चीज़ें होती है, एक बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा है, तो वो काफ़ी अच्छा है, प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। आप पूछेंगे शेयर बाजार में वो कैसा चल रहा है, तो अगर कोई चीज़ पहले ही महंगी हो जाए तो उसमें आपको आगे कितना फ़ायदा मिलेगा, ये आपको सोचना है। तो डिफेंस में संभावनाएं बहुत बड़ी हैं, कंपनियाँ काफ़ी अच्छा कर सकती हैं, लेकिन वैल्यूएशंस कई जगहों पर काफ़ी पहले से ही रिच हो गए हैं, तो इसलिए आपको बहुत सावधानी के साथ उसमें चुनाव करने की ज़रूरत है।
जय कुमार जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ गाजियाबाद से।
मार्केट मंत्रा की पूरी टीम को मेरा नमस्कार।
जी नमस्कार।
मेरे दो सवाल हैं, एक सवाल तो ये है कि निफ्टी 50 इंडेक्स की तरह क्या डिफेंस का भी कोई इंडेक्स है और उसका नाम? दूसरा ये सुनने में आ रहा है कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज करने से इंजन खराब हो रहे हैं।
जी देखिए, आप अगर डिफेंस के बारे में कोई पर्टिकुलर इंडेक्स देखना चाहते हैं तो आप निफ्टी इंडिया डिफेंस, ये इंडेक्स आप देख सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं। और इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में आपको बहुत ज़्यादा शक शुभा नहीं रखना चाहिए, ये ब्लेंडिंग सिर्फ भारत में नहीं हो रही है, दर्जनों देशों में हो रही है और बहुत सारे विकसित देशों में हो रही है, तो आप इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में बहुत चिंतित ना रहें। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपको अपनी गाड़ी की कंपैटिबिलिटी ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए, यदि आपकी गाड़ी पुरानी है तो शायद आपको सीमित ब्लेंडिंग वाली जो 10% तक ब्लेंडिंग जो जिस पेट्रोल में हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 20% जो है वो शायद नई गाड़ियां जो आ रही हैं उनके लिए ज़्यादा अनुकूल है।
बिल्कुल ठीक। अंबुजा ओडिशा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबुजा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, आप सवाल पूछ लें प्लीज।
गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा।
गुड इवनिंग।
हेलो हर्ष जी, हेलो राजीव जी, हेलो सरबजीत जी, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, थैंक यू।
क्या दोबारा पूछना पड़ेगा अंबुजा?
व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो,
व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट,
कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, देखिए जब आप कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करें, उनके आप आंकड़ों को देखें, तो कैश फ्लो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। यदि कंपनी का कैश फ्लो अच्छा है तो जाहिर सी बात है कि फिर आप उस कंपनी की आगे की संभावनाओं के बारे में निश्चिंत रह सकते हैं। कैश फ्लो एक महत्वपूर्ण पहलू है, जरूर देखना चाहिए।
Harsh, before we move forward in the program, let's take a look at what we have on the GST reforms.
Correct.
On the occasion of Independence Day this year, from the ramparts of Red Fort, Prime Minister Narendra Modi announced the next generation of GST reforms by Diwali. His vision was realized on 3rd September with the GST Council reducing tax rates in many household goods to ease the life of common people. Today, we take a look at the reforms for the tax-free goods. We have a report on this.
Under the next generation GST reforms, the government has taken significant steps to ease the burden on the common man by exempting several essential goods from the GST. Under the new structure, consumer goods including vegetables, fruit, nuts and juice have been reduced from 12% to 5% slab. Snack items such as namkeens, bhujia and mixtures have also been brought down to 5% from the previous 12% tax rate. Furthermore, the GST on sugar confectionery including candies, toffee, jelly has come down from 18% to 5% tax bracket to ease the burden on products made primarily through sugar. Talking to the media, a grocery shopkeeper Suresh said that the government has given big relief to the people ahead of the upcoming festive season.
पहले 18% GST था सो उसको आज 12% कर दिए, 5% था सो GST उसको जीरो कर दिए, आज तेल, साबुन, पेस्ट, घी, तेल सभी का 5% कर दिया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा चमत्कार है।
The GST rate cuts will result in lower retail prices, which in turn will encourage the consumption of daily essential goods and increase demand for manufactured products, including processed food items. Reduced prices for almost all food products are expected to promote ease of living, boost demand, attract fresh investments and generate employment. Nitika Gupta, Akashvani News, Delhi.
Rajiv, you know, the new GST reforms are positively impacting the Indian health sector by making healthcare more affordable and more accessible. There's been a reduction in GST on essential medicines, medical devices, and in fact, even lower rates on services like fitness centers, if I were to talk about preventive healthcare sector. What's your expert comment on this? How far is going to be, you know, effective for the common man, so as to say?
Ji. सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्वास्थ्य संबंधी जो भी चिंताएं हैं, मतलब उनके लिए आपको अपनी जेब के बारे में बहुत अब नहीं सोचना है। दवाएं सस्ती हो रही हैं, हेल्थ केयर सस्ता हो रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर के कहीं ना कहीं जो हमारे जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है स्वास्थ्य, सबको कभी ना कभी इसके बारे में कुछ चिंता करनी पड़ती है। कुछ अगर भगवान न करे किसी को कुछ सामना करना पड़े, लेकिन उससे पहले प्रिवेंटिव तौर पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेकर के रखना पड़ता है। हर जगह आपको राहत मिली है और ये बहुत अच्छा है। ये हेल्थ केयर सेक्टर के लिए भी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि लोग ज़्यादा जागरूक होंगे, ज़्यादा उनके लिए अफोर्डेबल होगा, तो जो लोग पहले हिचक जाते थे हेल्थ इंश्योरेंस कराएं या ना कराएं, इस कार्यक्रम में ही कई बार लोगों के सवाल आए हैं, लोग पूछते थे इतना एक 18% GST लग जाता है, और हम ये बात पहुंचाते भी थे कि हाँ GST परिषद में जब भी उचित मौका लगे तो इस पर जरूर विचार करना चाहिए, और ये बहुत अच्छा फैसला हुआ है, ये मैं यही कहूँगा।
और ख़ास करके देखें कि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस हो या जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस हो, दोनों पर से जिस तरीके से GST को हटाया गया है, इसकी डिमांड भी एक तो बहुत दिन से चल रही थी और इसे उचित पाया गया, हटाया गया। दो पहलू हैं, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इसके इंश्योरेंस के ब्रैकेट में आएंगे, क्योंकि भारत में अभी भी बहुत कम लोग थे जो इंश्योरेंस करा रहे थे, हालांकि इनकी संख्या लगातार बढ़ रही थी। कितना आप मानते हैं राजीव कि लोगों को आसानी होगी, उनकी जेब पे कम बोझ पड़ेगा?
जी, निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इसके दूसरे भी पहलू हैं। जैसे कई सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से या इंडस्ट्री की तरफ से जो एक थोड़ा सुनने को मिल रहा है कि नहीं, हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा, तो हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, हिसाब लगाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें जो है ना, ये थोड़ी सी आशंका पैदा करती हैं। तो इस पर मुझे लगता है कि सरकार को और इस क्षेत्र के रेगुलेटर को, IRDA को, थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा।
हाँ, और उन्हें कुछ अगर जरूरत पड़े तो ये दिशा निर्देश भी जारी करना पड़ सकता है, ताकि कुछ फायदा मिले ग्राहकों को।
हाँ, क्योंकि इतना बड़ा कदम हुआ है, और अगर इसका फायदा लोगों को नहीं मिलेगा तो इससे लोगों में निराशा बनेगी। जिस तरह से NPPA ने फार्मास्यूटिकल प्राइसेस को लेकर के बहुत साफ निर्देश दिए हैं, बहुत प्रोएक्टिवली कहा है फार्मा कंपनियों को कि 22 तारीख से आपको दवा की कीमतें घटानी पड़ेंगी, आप इसके लिए अपने पूरे चेन को तैयार कीजिए। तो इसी तरह से प्रोएक्टिव तरीके से मुझे लगता है कि सरकार को और इंश्योरेंस रेगुलेटर को भी काम करना चाहिए।
दिस हैज टू बी पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर्स।
एब्सोल्युटली। आई सी दैट शंकर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ भोपाल से। शंकर जी अपना सवाल पूछिए।
नमस्ते मार्केट मंत्र टीम।
जी नमस्ते
सर, माय क्वेश्चन इज अबाउट गोल्ड, प्राइवेट बैंक एंड पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक काफी दिनों से चले नहीं है, तो क्या उनके ऊपर फोकस किया जाए? प्राइवेट बैंक भी कोई ज्यादा नहीं चले हैं, क्या वो बेटर रहेंगे? या हम लोगों ने जिसने गोल्ड बस मिस कर दिए, क्योंकि गोल्ड तो अब बहुत तेज हो चुका है, कि अभी भी गोल्ड में आपको लगता है कुछ बचा है गोल्ड ईटीएफ में फॉर इन्वेस्टर, किस तरफ ज्यादा ध्यान दें?
जी देखिए, जो सबसे पहले अगर गोल्ड प्राइसेस की ही बात करें, काफी ज्यादा तेजी आ चुकी है और ये साल खासतौर पर सोने के लिए बहुत तेज रहा है। तो काफ़ी चल जाने के बाद हमेशा ही सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। हालांकि कई बार ये होता है कि एग्जुबरेंस या मार्केट फोर्सेज इस तरह से काम कर रहे होते हैं जिसमें आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ठीक है आज की तारीख में अगर सोने की कीमतें 1.10 के आसपास पहुंच रही हैं तो क्या कल को वो 1.15 नहीं हो जाएंगी, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन इतनी तेज़ी आ जाने के बाद आपको सावधान रहना चाहिए और उसमें एक्सपोजर कम रखना चाहिए। दूसरा आपने पूछा है बैंकिंग सेक्टर के लिए, तो बैंकिंग सेक्टर पूरे मार्केट में एक ऐसे क्षेत्र की तरह से है जो काफ़ी ज़रूरी है। लगभग एक तिहाई हिस्सा वेटेज जो है पूरे बाजार में इसी सेक्टर का है। बाजार को अगर आगे बढ़ना है तो बैंकिंग सेक्टर को आगे बढ़ना पड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर आगे बढ़ना है तो बैंकों के बिना अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण या कह लें केंद्रीय क्षेत्र है आपकी अर्थव्यवस्था के लिए और आपके शेयर बाजार के लिए भी। इसके बिना बाजार की गाड़ी भी आगे नहीं बढ़ेगी, तो आपके पोर्टफोलियो में इसका हिस्सा अच्छी तरह रहना चाहिए, जरूर रहना चाहिए। स्थितियां बनते हुए दिख रही हैं कि हाँ शायद पीएसयू बैंकों में तेजी नजर आए, प्राइवेट बैंक भी बहुत पीछे नहीं रहेंगे। अगर पूरे बाजार में चाल बननी है तो बैंकिंग के बिना ये चाल नहीं बनेगी।
एंड लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट द ऑयल वीकली न्यूज़ हैज़ टू से फॉर अस। Global crude oil prices surged this week on renewed concern over Russian crude supply, outweighing worries over oversupply. Both Brent and US crude oil future jumped between 2% and 3% this week. Brent crude $66.99 a barrel, while US crude ended the week at $62.69 per barrel. And we like to have a brief comment on this from Ranjan.
जी देखिए, पिछले कुछ समय से कच्चे तेल की कीमतें एक दायरे के अंदर हैं, ऊपर नीचे चलता रहता है। कभी किसी हफ्ते में थोड़ा सा कम ज़्यादा, इस हफ्ते में थोड़ी सी बढ़त रही है, लेकिन मोटे तौर पे आप समझे तो अभी हाल में हमने $65 के आसपास के भाव देखे थे, ऊपर 70-72 तक भी जा रहा है, लेकिन एक दायरा बना हुआ है। और अभी फिलहाल कोई ऐसा कारण नहीं दिख रहा है जिसके चलते इसकी कीमतें बहुत तेज़ बढ़ें, लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे आए ऐसा भी समय नहीं लग रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल। और आज के लिए वक्त खत्म हो रहा है। तमाम श्रोता आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और राजीव रंजन आप आए, आपने तमाम विषयों पर चर्चा की, आपका भी दिल से धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
लिसनर्स, बिफोर वी रैप अप, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi inaugurates multiple development projects worth over 9,000 crore rupees in Mizoram. Domestic markets rise for the second straight week. Sensex and Nifty gain 1.5% this week. And global crude oil prices surge this week on concern over Russian crude supply. Brent jumps over 2% to end near $67 a barrel.
आज के लिए बस इतना ही। कल शाम 6:30 बजे एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी मार्केट मंत्रा के अंक के साथ, जहां आप म्यूचुअल फंड्स के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल दीजिए हमें और सरबजीत को इजाजत। नमस्कार।
नमस्कार। Market Matra.